الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اپنی ڈائری ہو، کوئی بک ہو، یا اگر یہ نہیں ہے تو کمپوز کر لیں درود شریف، انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. لکھنا ہے نا کمپوزنگ درود شریف، انشاءاللہ اس پہ بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آج بھی الحمدللہ اوورسیز یعنی بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان سلسلہ ہے اور امیل سنت سے انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے. اور کل کی خبر ہے، ہمارے ایک حارث تھے ندیم گجر اور ساتھ رہتے تھے، میرے ساتھ بھی تھے، میسج آیا کہ انتقال ہو گیا. ہارڈلی 45-47 کن کی ایج ہوگی، اور میں نے معلومات لی، تعزیت تو میں نے کر لی تھی، پھر میں نے معلومات دی تو پتا چلا کہ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر، دو تین دن تھوڑی پوزیشن اپ ڈاؤن رہی، ہاسپٹل بھی آنا جانا رہا، لیکن جس دن ڈیتھ ہوئی اس دن پتا چلا کہ انہوں نے گھر میں کہا کہ میں اب نارمل ہوں، مگر وہ جو نارمل کہنا تھا تو وہی شاید ان کی سانسیں آخری تھی اور وہ انتقال کر گئے. تو میں امیر سنت سے میں چاہتا تھا کہ ان کے تعلق سے کچھ بیان ہو جائے، اور یہ جو ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ موت کہ جس کے لیے، جیسے آج شام کو یہ جب میں بات چیت کر رہا تھا اپنے ممالک کے ساتھ کہ ان کی خبر کے بجائے، ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں دعوت اسلامی میں بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن آج شام کو جیسے کہ فیلنگ کبھی کبھی الگ الگ ہوتی ہیں، تو موت کے لیے جیسے تیار رہنا ہے یار، موت کے لیے تیار رہنا ہے. حضور پچھلے دنوں آپ نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی تھی جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے تعلق سے کہ امام احمد بن حنبل کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہے اور جس پر کچھ بدلہ نہ ہو. یہ آپ نے مجھے پچھلے دنوں یہ تحریر بھیجی تھی. تو یہ کہ کوئی قیامت کے دن ہم ہو اور ہم پر کوئی بدلہ بھی نہ ہو، وہ کامیابی ہو جائے، اور موت کی تیاری کے لیے ہم مینٹلی طور پہ ایسی کیا چیزیں رکھے کہ میں تیار ہوں، مطلب حقوق العباد کے تعلق سے بھی. تو یہ کچھ ملے جلے سے میرے سوالات اور جذبات تھے، اگر اس پر کچھ آپ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں.
اللہ پاک ندیم گجر کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو بے حساب بخشے. نہ اچانک یہ سمجھو کہ ایک طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان گن مین ہمارا حارث، گن مین ہوتا ہے گن اس کے پاس، یہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے تھے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ظاہری طور پر یہ ڈکلیئر ہوئے ان کے، اور ان میں یہ صحیح بھی ہو گئے کہ اب میں نارمل ہوں. اس کو بولتے ہیں سنبھالا لینا، یہ اصطلاح ہے اردو کی، کہ جب یہ مریض ایک دم سیٹ ہو جائے نا تندرست، تو لوگ سمجھتے واہ واہ بھائی تو صحیح ہو گیا. تو یہ موت سے پہلے بعض اوقات یہ سنبھالا لیتا ہے، پھر لاؤ. تو بظاہر یہ کنڈیشن ان کی ہوئی بیچاروں کی، اور یہ دنیا سے چلے گئے. اب بس اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں بارگاہ رسالت میں نظر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اصال ثواب کرتا ہوں. اللہ ان کے سوگواروں کو جو بھی خاندان والے ہوں, ماں باپ بال بچے, اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے, صبر جمیل نصیب کرے, صبر جمیل پر اجر جزیل عطا ہو. صبر جمیل نام تو بہت سنا ہوگا آپ نے. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ کے لیے صبر کیا جائے وہ صبر جمیل کہلاتا ہے. ورنہ صبر تو آ ہی جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, بندہ بہت کچھ بھول جاتا ہے. آج میت ہوئی, بھاں بھاں کر کے رو رہا ہے, اسی تاریخ کو آئندہ سال اس کی شادی ہو رہی ہوگی, گھر میں شادیاں ہو رہی ہوں گی, بہت کچھ ہو رہا ہوگا. تو صبر جمیل, اللہ کی رضا کے لیے بندہ صبر کر جائے تو اس کا بڑا درجہ. اور بھی تعریفات بزرگوں نے لکھی ہیں صبر جمیل کی. حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا, ابو حازم مجھے کوئی نصیحت کیجئے. میں نے کہا لیٹ جائیے, پھر تصور کیجئے کہ موت آپ کے سر پر ہے. اب دیکھیے کہ اس موت کے وقت, اس آخری وقت, آپ جو پسند کر رہے ہیں اسے فوراً اختیار کر لیجئے, اور جو چیز ناپسند کریں اسے فوراً چھوڑ دیجئے. یہ نے موت کا تصور کا ایک طریقہ انہوں نے بتایا. یہ کہ بندہ بے بس ہے, ہمارے بڑے خواب ہوتے ہیں لیکن کرنا کچھ بھی, نصیب ہوگا نہیں ہوگا اپنے اختیار میں کیا ہے. وہ کسی نے کہا ہے, یوں بنی ہیں رگیں جسم کی, بنی منے بنائی جو ہوتی ہے نا, تو یوں بنی ہیں رگیں جسم کی, ایک نس ٹس سے مس اور بس. یعنی ایک نس بھی اگر, نہ جانے ہزاروں لاکھوں نسیں ہمارے بدن میں, ایک نس اگر آگے پیچھے ہوتی ہے, ٹس سے مس ہوتی ہے, ہل جل کرتی ہے, ایک دوسرے پر آ جاتی ہے, تو پھر بس. یعنی تکلیف سے بنتا بے چین بے قرار. تو اپنی چلتی کتنی ہے, کیا پھونفاں کرے آدمی اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں یہ ہوں, میں وہ کر دوں گا, منہ توڑ دوں گا, فلاں ہوں, یہ کرتے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں. ایک نس اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ٹس سے مس. یوں بنی ہے رگیں جسم کی, ایک نس ٹس سے مس بس, کہ بندہ بے چین بے قرار. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. مصور اللہ پاک کا ایک نام ہے, تو مصور میں نے تصویر بنانے والا, تو بندہ پیدا اسی نے کیا, اسی نے اس کو بنایا. تو یعنی یہ انسان, یہ اس کا ایک شاہکار ہے, ایک عظیم, مطلب یعنی کہ اس نے ایک مخلوق پیدا فرمائی. انسان ایک عظیم مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور احسن صورت پر اللہ پاک نے اس کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہے نا, بے شک اللہ نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا. تو ابو اس شاہکار کا وہ ٹائم پیریڈ کیا ہے, ٹائم پیریڈ بھی ہے. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. 60 اس امت کی عمر ویسے اوسطن 60 اور 70 کے درمیان ہے, تو وہ وزن کے حساب سے تو 60-65. ابھی ہم تو 45 برس والے کی بات کرتے ہیں, 45 ایئرس والے کی, تو جلدی بھی تو جاتا ہے آدمی, کچھ لے بھی لیتا ہے اوپر سال, لیکن کب تک؟ آخر موت. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ آدمی کب تک گل چھرے اڑائے گا, کب تک ادھر ادھر بھاگے گا, جسے کہ وہ ایک مچھلی پکڑنے والے نے ڈور ڈالی دریا میں, مچھلی اس میں پھنس گئی, مچھلی اس میں اٹک گیا کانٹا اس کے حلق میں. اب جب کانٹا اٹکے گا اس کو تکلیف ہوگی, یہ بھاگ دوڑ کرے گی, پھتکے گی, ادھر دوڑے گی. تو وہ ہنس کر ماہی گیر کہہ رہا ہے, یہ مثال دی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ تو جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے, جتنا پھدکنا ہے پھدک لے. میں نے جیسے ہی ڈور کھینچی, آنا تو نے میرے ہی پاس ہے. اب مچھلی کی جس طرح لگام ڈور, یہ ماہی گیر مچھلی کے شکاری फिश के शिकारी के पास है। इसी तरह यानी ये मिसाल दी गई कि हमारा जो भी है वो सब अल्लाह के इख्तियार में है। कितना आदमी उछले फूदके, इसको मारे, उसको पीटे, उसको फायर करे, उसको पटखे, पहलवान बन जाए और रुस्तम में जमा बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन जब कुदरत उसकी डोर खींचेगी मुर्दाओं के गिर पड़ेगा। अल मौत, अल मौतो बाबुन कुल्लु नफसिन दाखिलूहा, अल मौतो कदहुन कुल्लु नफसिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। मौत एक ऐसा जाम है, एक ऐसा मशरूब है, एक ऐसा ड्रिंक है कि जिसको हर जानदार ने पीना है। कुल्लु नफसिन दाइकतुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। तो हमें जो भी हम करें काश मौत पेशे नजर रहे। तो अब यह कि मौत आएगी वो तो यकीनी तौर पर, जिंदगी में जिंदगी अच्छी गुजरे, सेहत के साथ गुजरेगी तो हम इबादत ज्यादा कर सकेंगे, दीन के लिए भागदौड़ ज्यादा कर सकेंगे, ये तो है ना। तो अब हम जो मतलब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे, हमने मतलब हालांकि था ये कि खुर्दन बराए जीस्त, यानी इतना खाओ या खाना जिंदा रहने के लिए, खुर्दन बराए जीस्त यानी इतना खाओ के जितना जिंदा रहने के लिए, जिंदा बंदा रहे। लेकिन हमने जिंदगी का मकसद उलट कर दिया, खुर्दन बराए जीस्तन के बदले जीस्तन बराए खुर्दन। खाना जिंदगी के लिए था, हमने कर दिया जिंदगी खाने के लिए, और इसको फिर यूं हमने आसान तर्जमा कर दिया, खाओ पियो जान बनाओ, यार क्या रखा है दुनिया में, खाओ पियो मौज कर लो। ये भी भले ही अल्फाज नहीं बोलते लेकिन जिंदगी का अंदाज जो है, स्टाइल जो है लाइफ की, तो वो इसी तरह हम लोगों की बन गई है। तो अब ये कहे, चूंकि वो बात ये थी कि आप तो माशाल्लाह हमारी दावत इस्लामी या आपकी अपनी दावत इस्लामी की क्रीम है, अहम इस्लामी भाई हैं, आपको दुनिया भर में सुन्नतें आम करनी, दीन की धूमधाम करनी है। तो अब ये कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, खाने पीने के ताल्लुक से एहतियात। ये ब्लड प्रेशर जो होता है हाई, इसके बाद वजूहत होती हैं, इनमें एक तो नमक का ज्यादा इस्तेमाल, इस तरह घी तेल ऑयल ऑयली जो आइटम्स हैं, या मतलब यानी कि फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, तो इस तरह के जो फूड खाए जाते हैं इनमें ये तेल नमक ये दोनों इजाफी होते हैं, ज्यादा बाज़ोगाज़ होते हैं। और जो नट खाते हैं हम मुख्तलिफ नट, इनमें भी नमक होता है। गिज़ा में नमक तो जा रहा है पेट में, जो हम घर में खाना खाते हैं उसमें जा रहा है नमक, उसमें सॉल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन हम इजाफी चीजें मतलब हम रिफ्रेशमेंट के लिए वो नीमकों की आइटम और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं दिन में, तो इनमें सब में इजाफी नमक, इजाफी ऑयल, इजाफी रोगन तेल, ये सब जा रहा है। अच्छा, फिर ये जरूरी नहीं है कि ये जो घी तेल वगैरह जा रहा है ये मेयारी हो, स्टैंडर्ड का हो, अच्छी बेस्ट क्वालिटी का हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बाजार की चीजें तो बाजार की चीजें, वो कमाने के लिए होता है, तो ये हमारा इस्तेमाल ज्यादा है। तो फिर जिसको देखो शुगर, और खुद पाकिस्तान का जो मालूम हुआ है कि हर तीसरा पर्सन ये शुगर है उसको, यानी कि तीन में से एक समझो शुगर का मरीज है हमारे यहाँ एवरेज औसतन। अब हो सकता है कम ज्यादा हो, जो ये खबर है हो सकता है उसमें भी कोई फर्क हो। तो इस तरह मतलब ये कि शुगर इतना तेजी से जा रहा है और ये इतना रिस्की है, शुगर जब एकदम जंप करता है बाजों का तो ब्रेन पर अटैक करेगा, तो कभी आंख पर अटैक करता है, कभी कुछ मतलब और मतलब मसला। इसी तरह ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये भी जंप करता है तो बस वो दिमाग की नस बाजों का फाड़ देता है, शिरियान जिसको बोलते हैं, और ब्रेन हेमरेज ये हो जाता है। आप सुनते रहते हो ये चीजें, तो ये ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो बाजों का इससे हो जाता है। ये फिर बंदे का बचना, इंसान का बचना ये मुश्किल होता है। तो इसमें जरा मेहरबानी करें, अपने खाने पीने में एहतियात करें। तो यूं मतलब खाने में एहतियात, अपने वजन को मैनेज करते रहें, देखते रहें कि मेरा नॉर्मल वजन कितना है, अपनी मेरी एज मेरी हाइट वगैरह के हिसाब से। आप खुद इसको, हर एक के हाइट में फर्क होता है, तो ये मतलब आप खुद मैनेज करें इसको कि मेरा वजन कितना है। फिर अपने यहाँ स्केल भी हो और अच्छी क्वालिटी का स्केल हो, जो मतलब परफेक्ट नंबर बताए आपको, आपका मतलब वजन बताए, वेट बताए। तो पेट का भी ख्याल रखना है, वेट का भी ख्याल रखना है। पेट भी फुटबॉल बन जाता है खा खा के। अब बाद लोग बोलते हैं बैठे बैठे निकल आए, बैठे बैठे। ये तो किसी ने कहा था, पुरानी कई साल पुरानी बात है, एक थे मत हजरत तो बहुत पेट उनका, तो मैंने कहा उनको ये आपका, मैं तो कह सकता आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा तो बैठे बैठे, मैंने कहा मैं भी पहले यही समझता था कि बैठे बैठे निकलता है, ये पेट यहां से फूलता है। बैठे बैठे होता होगा लेकिन खा कर बैठ गए तो भी फूलेगा, समझे। तो इस तरह मतलब ये कि अगर, और फिर पैदल चलना, वॉकिंग ये करते रहना रोज की कम से कम पौन घंटा अगर वॉकिंग करे, वो भी कंटिन्यू और नॉर्मल स्टाइल। अब यूं पीछे हाथ बांध कर हे करके बातें करते हुए चलेंगे तो इसका वो फायदा नहीं होगा, करने के थोड़ा नॉर्मल स्पीड हो, मुनासिब स्पीड हो, और हाथ जो है ना ये कहीं बंधे हुए ना हो, इंगेज ना हो। हाथ जिस तरह पांव चल रहे हैं ना, तो हाथ भी यूं चलते रहे। तो ये शोल्डर है, आपके आर्म्स हैं, और ये सबको मतलब उसका फायदा पहुंचेगा, यानी पांव भी चल रहे हैं और हाथ भी चल रहे हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह आपके वजूद को ज्यादा बेहतरी देगा। अब ये अलग बात है कि आवाम के सामने हाथ चलेंगे तो लोग बोलेंगे इसको हो क्या गया है, समझ नहीं पड़ेगी नहीं कर क्यों रहा है। तो पार्क तो बने हुए, पार्क में ट्रैक बने होते हैं चलने के, तो वो उस ट्रैक पर मतलब आप चलें, या घर में अपना अगर कुछ सादा जगह है तो उसमें ही चलें। बिल्कुल आवाम के सामने बाजार में नहीं चलना, बोलना लोग बोलेंगे पागल आदमी है, इसको हो क्या किया है, ये किस तरह चल रहा है। तो अपना वकार अपनी इज्जत ये भी संभालना है। फिर आपको कोई पकड़ेगा मजा कर दो, आप फिर मुझे दाव पे लगा दो कि भाई इसने ये सिखाया था हमको कि यूं चलना, तो फिर मुझे भी दो बातें हो सकता है वो बोले। तो इसलिए वो कहां क्या करना है इसका शऊर सेंस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जरा कोशिश करेंगे ना, खाने पीने में एहतियात, ये जंक फूड। और ये अब आप लोग यहां भी, हम लोग मजबूर हैं, आपको ऐसी ऐसी आइटमें देते हैं, आपके नाम पर मिल ही जाता है, तो जो होता है ना तो बस वो होता है, वो खाया जाता है, जो खाया जाता है क्या क्या देते हैं कि बस। अब वो अगर देते हैं अपने सलाद वगैरह, तो सलाद जो है वो उतरती नहीं है, मुश्किल ही है। अब सामने रसगुल्ले पड़े हों और आपको सलाद दे दे कोई, तो कहां से निकलेंगे आप यार इसको, और रसगुल्ला और गुलगुल्ला ही समझ में आएगा कि इसको फिसलाओ अंदर, इसकी मर्जी है जो चाहे अंदर करे, अभी चला जाए बस फिर देखी जाएगी। मैं रह ना जाऊ सब मतलब इस तरह बोटी छोड़कर बोटा पकड़ना है और बस खाए जाना है, खाए जाना है। पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, मगर मजबूरी है। अब चूरन की जगह भी नहीं छोड़ी, अब इतना ठांस सांस के भर लिया तो अब डाले क्या, ये मजबूरी है, मर हसरत रह जाती है, हसरत नहीं निकलती है, और खाना है और खाना है। फिर डायरेक्ट जो वजूद का होगा, फिर फैटी लीवर, तो ब्लड प्रेशर हाई, तो यूरिक एसिड, तो लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब, और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन इसका कोई एहसास नहीं होता। बाद लोग ना अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, बोलते हैं इसको कुछ भी नहीं था, अरे भाई इसको अंदर में बहुत कुछ था। हार्ट फेल जो हुआ ऐसे नहीं हुआ है, अंदर बहुत कुछ जब आता है, कभी टेस्ट करवाया नहीं होगा, समझे। तो ये इसको बेचारे को ये ले गया, उसे टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, और कमोवेश मेरा ख्याल में 3-3 महीने अगर टेस्ट करवाते रहे तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी, इंशाल्लाह इसका भी फायदा हासिल होगा। बाद लोग इसलिए नहीं करवाते, अगर कुछ निकल आया तो फिर क्या करेंगे। एक ने कहा मैं शुगर का मरीज हूं, मुझे शुगर 400 पता नहीं क्या क्या वो हिसाब बता रहा था, इतनी होती थी, अब तो मैंने टेस्ट करना ही छोड़ दिया। अरे क्यों, बोला टेस्ट करवाऊंगा तो फिर खा नहीं सकूंगा ना, यकीन माने सच्चा वाक्य है। अब होगा क्या यार, अल्लाह रहम करे, वो नहीं आती समझ, मतलब फिर कुछ होगा नहीं। अगर कुछ शुगर ने कहीं अटैक कर दिया ना, फिर तो परहेज ही मर के भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बोलेगा तो करेंगे, हम लोग बोलते हैं तो हंसी आती है। मौलाना को समझ क्या पड़ती है, ये बाद में पता चलेगा। डॉक्टर बाद में समझा था, मौलाना पहले समझा चुका था हमको, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती ना, करे क्या यार। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मदनी बेटो, आप अब ये जहन बना लो कि हमको मतलब भूख बाकी हाथ छोड़ देना है, रोक लेना है, और हर चीज को कुल्ली इख्तियारात नहीं देना। डर 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 के थोड़ा 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 खाना है, और सारा दिन बकरे की तरह निगलते बिचरते नहीं रहना। बाहर ये पकड़ा तो, अब बाहर निकलते होंगे तो आलू तो छोले तो कचौरियां तो पूड़ियां तो पता नहीं क्या क्या दही बड़े और डालते रहते होंगे, तो फिर होगा क्या आपका यार। अभी जवानी समझ नहीं पड़ती, लेकिन बाज बेचारे ऐसे अल मस्त होते हैं कि इनको चलता देखकर आपको हंसी आएगी, मुझे अफसोस होता है कि यार ये बेचारे का होगा क्या, चल नहीं सकते इतनी मतलब है वो। जब ऐसों को देखना नहीं चाहिए सिर्फ, तो उसका दिल दुखेगा। बाजों का देख, खाए पिए खाने पीने से ही मोटापा आता है ये जरूरी नहीं है। बाज दवाएं ऐसी होती है, मेडिसिन होती है, उससे भी बाजों का बदन फूल जाता है। तो अगर खाने पीने से भी फूला तो आपका खाया है या मसर है उस पर, अपना खाया है इसने। आप दुआ करें और क्या, इसको अल्लाह पाक इस हिर्स से बचाकर नॉर्मल कर दे। और हमने अपनी जान को नॉर्मल इसलिए रखना है कि हम इबादत कर सकें, और कोई मकसद ना हो। अल्लाह पाक की इबादत के लिए वजन कम करेंगे, इसका भी सवाब मिलेगा, और ताकि दीन के लिए भी हम भाग दौड़ कर सकें। अब वजन ज्यादा होगा तो आप मदनी, आप काफिलों में सफर नहीं करेंगे, आप बोलेंगे यार काफिलों में सफर कैसे करूंगा, वॉशरूम पता नहीं मुझे सही मिलेगा के दरवाजे में ही फंस जाऊंगा, या कमोड़ में कैसे। मैं वाकई हैरत कर रहा हूं कि जो हमारे पास आए हुए ना दूर दूर से बाजों के वजन है, कैसे हवाई जहाज में सफर किया होगा। शायद इसके लिए डाइटिंग की होगी, ये कुछ जरूरत ना पड़े, वरना वो हवाई जहाज का कमोड वाकई यानी के। अब मतलब मुझे तो पता है ना कि जो मतलब हम जैसों को भी आजमाइश होती है उसमें, हालांकि मेरा वजन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल, लेकिन ये एक आजमाइश होती है। ये बेचारे कैसे बैठते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तो शायद हो सकता है, एक ने कहा था जो वजनदार थे कि मैं तो मतलब वो डाइटिंग करता हूँ, खाना पीना छोड़ के सफर करना होता है, तो ताकि वो हवाई जहाज में सारे सफर में जरूरत ही ना पड़े जाने की। लेकिन कभी इंसान का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हवाई जहाज में परेशानी तो होगी ना, सही की परेशानी होगी। तो यूं भी मतलब ये कि हर सूरत में मतलब आसानियां होती है, वो आदमी अपना वजन नॉर्मल रखे, कुदरती निजाम भी यही है ना। तो बहरहाल इसको आप अपने वजन को, अल्लाह करे आइंदा आए तो मैं जिनको देखा उनको पहचान नहीं सकूंगा, यार ये वही लगता है यार, पता नहीं और कोई है, वो तो यूं था उसका वजन, तो उसे बैठा नहीं जा रहा था बेचारे से, नहीं बैठा जाता, मजबूरन कहरन जबरन बैठना पड़ता है। तो इसलिए वो इंशाल्लाह आप मेरी बात पर अमल करेंगे, गौर करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी जो कमजोर यानी बाजार नॉर्मल होते हैं वो भी ज्यादा खाते हैं, तो उनकी ये समझते हैं कि हमको कुछ नहीं होता, इनको बहुत कुछ होता है। वो जो हेल्थी है उसको कभी कभी एहसास होता होगा कि यार मैं जरा हेल्थी में कहता हूँ खाली, हमारा कहते हैं माशाल्लाह सेहतमंद है, हकीकत में सेहतमंद नहीं है ना, हेल्थी है, ये इल है, एक बीमारी है मोटापा, लेकिन हम मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद है। तो इस तरह उनसे बेचारों उनको तकलीफ होती है, तो इनके लिए दुआ करनी चाहिए, इनका मजाक ना उड़ाया जाए, इनको मदद तंज करना दिल आजारी गुना का काम है, समझा सकते हैं आपका असर है तो चाहिए, नहीं तो ना समझाए। क्योंकि ये समझाना मैंने तकरीबन छोड़ दिया समझाना, मैं बहुत कोशिश की और मानते ही नहीं यार, खाली हाँ बोलेंगे फिर सामने आने से कतराएंगे, भाई ये करेंगे ये हमसे नहीं हो सकता। कोई कोई तो बोल देता है कि खाए बिगर वजन कम हो जाए, ऐसा कोई नुस्खा है। अब बलून में हवा भरो और ये हवा अंदर ना जाए, हवा भरने पंप चलाने का भी मतलब इन्हें लुत्फ हम रहते हैं, तो बलून तो फूलेगा ना यार। अल्लाह पाक मेरे कहे की इलाज रख ले और आप सबके सब ऐसे सब भाग दौड़ करने वाले फुर्ती वाले मुबल्लिक बन जाए, नॉर्मल बिल्कुल हेल्थी सेहतमंद, वो हेल्थी नहीं है जिसको मैंने पहले कहा था, अच्छी सेहत और खूब इबादत करें कि भाई पहले तो नमाजों में जिसको सुस्ती थी अब तो माशाल्लाह तहज्जुद बढ़ता है, इशराक चाश पड़ता है, वह बीन भी नहीं छोड़ता। मैं ये सुनना चाहता हूँ नेक अमल का तो ऐसा आशिक है कि मत पूछो बात,
इस्लामी
इतने नेक अमल पर अमल है उसका।
इस्लामी बहने भी चूंकि अभी
स्टूडेंट
में ये सवाल ये कर रहा हूँ कि हम एक जगह पढ़ रहा था कि किचन मैनेजमेंट जो है ना इससे भी सेहत का बड़ा अमल दखल है, और इस्लामी बहनों को अगर इस मामले में थोड़ा सा ये हो जाए कि हमने पकाना किस तरह है और क्या पकाना, तो इनके लिए भी बेहतर होता है, इनके बच्चों के लिए बेहतर होता है, बच्चों के अबू के लिए और दीगर फैमिली मेंबर के लिए भी बेहतर होता है। तो आप चूंकि मदनी चैनल पर भी हैं, इस्लामी बहनें भी आपको पर्दे में सुन रही हैं, तो क्या आप इनके लिए कोई है कि जो आपने बातें बयान की तो जाहिर इनके लिए भी थी, लेकिन पकाना चूंकि ज्यादातर इनको होता है, हर कोई बाहर खाता है ये भी जरूरी नहीं होता, लेकिन घर के अंदर भी क्या ऐसी गिजाएं होती हैं जिनकी वजह से हमारा ये जो हेल्थ सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है?
पकाने से हेल्थ सिस्टम तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और पकाने वाले जो है ना, मेरा गुमान है, मेरे पकाने जिनके जो ना किचन वो चलाते हैं, ये मैंने दुबले पतले भी देखे हैं, तो ये शायद इनका खुशबू सूंघ सूंघ के नाक अट जाती होगी, खाने का दिल नहीं करता होगा, देख देख के इनका पेट भर जाता होगा। तो हो सकता है ये किचन मैनेजमेंट जिसके पास है या किचन का जो मतलब जो भी है, तो वो इस्लामी बहने हो सकता है कम खाती हूँ, खाया ना जाता, ये मेरा गुमान है। अब आगे तो यही रहनुमाई करेंगी, जमा है ना तो शायद किसी की पर्ची आ गया, नहीं नहीं आपकी खुशफहमी है, समझे, हमारी हर दूसरे दिन लड़ाई होती है कि ये बूटियां कम हो गई तो आलू कम हो गए, ये फिर पता चलेगा पैगाम आएगा ना। तो बहरहाल ये भी खाती है वैसे जनरली, कोई खाने में तो मतलब यानी फूड कल्चर है, कोई पीछे नहीं है, ये बाकायदा रेस लगाते हैं, इतनी रोटियां इतनी बोटियां, जो मतलब इतना इतना खा ले तो जो सबसे ज्यादा खाए वो पैसे नहीं देगा, जो हार जाएगा वो पैसे देगा, ये भी बजाय तो जुवाई की सूरत मालूम हो रही है। तो इस तरह भी एक ने एक दाव लगाते ही है, तो अल्लाह इनको हिदायत दे, उस अकल सली बता फरमाए, ऐसा किया तो तौबा कर ले, इस तरह के जो ज्यादा खा ले तो उस इसके बदले जो हार जाएगा कम खाएगा वो पैसे इसके भी देगा। तो ये
वो बात करते करते आप फरमा रहे थे जो दुबले होते हैं वो खाते तो इनको लगता है कि हमको खाना लग नहीं रहा, तो वो बात फिर कहीं और चली गई थी, तो उनको जब वो खाना खा रहे होते हैं मगर उनको खाना नजर ही नहीं आ रहा होता, तो खाना गया किधर, तो वो खाए चले जा रहे होते हैं, तो उनको भी क्या ओवर ईटिंग जो है वो इनको भी प्रॉब्लम करती है?
तो नसें मोटी नहीं होती ना, खून की रगें जो है इनमें होता है ब्लॉकेज, असल मोटी नहीं होती, ब्लॉकेज हो जाता है, लोथड़े बन जाते हैं, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह मतलब पतला आदमी भी बिला वजह ये जो खादम खाद करते हैं जो खाए जाते हैं, तो इनको तरह तरह के अमराज इनको भी हो जाते हैं, और दिल के अमराज इनको फालेज वगैरह, यानी के समझो कि तकरीबन 80% याद पड़ता है 80% बीमारियां ये खाने पीने से होती है, इन्हें खाने पीने में बेएतदाली, खाने पीने में बेहतियातियां, ये मतलब तरह तरह की बीमारियां, ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये भी खाने पीने की बीमारी है, दिल फालेज खाने पीने की बीमारियां, लकवा और कई बीमारियां जो खाने पीने में बेहतियाती से होती है, इसके अलावा भी बाज़ औक़ात हो जाती है, ऐसा नहीं है दिल यूं भी मतलब यानी कि फेल हो सकता है कि हाई टेंशन आ गया उसको, हाई टेंशन की वजह से भी मतलब बाज़ औक़ात ये दिल वगैरह के मरज हो सकते हैं।
अच्छा, ज्यादा नमक खाने से गुर्दे भी डिस्टर्ब होते हैं ना?
ज्यादा नमक खाएंगे तो गुर्दे जो है इजाफी नमक निकालने के लिए तो फंक्शन ज्यादा करना पड़ता है, तो इस तरह वो ओवर लिमिट वो मेहनत करेगा तो वो सारे उसको भी तकलीफ होगी, उसको बीमारी पैदा होगी, कमजोर पड़ेगा, जख्मी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंकरियां बन सकती हैं, वो स्टोन।
इसमें ये जो हम फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, मोस्टली इस्लामी भाइयों को पता होगा फ्रेंच फ्राइज का, बच्चों के ये बाहर से ज्यादातर जो लिया जाता है, तो आपने देखा होगा जो फ्रेंच फ्राइज जब ये तलकर इनको ट्रे में रखा जाता है तो उनके ऊपर बाकायदा सॉल्ट स्प्रे होता है, वो बाकायदा एक छिड़काव होता है सॉल्ट का, इसके बगैर तो शायद ये खाई भी नहीं जा सके इसको टेस्ट बनाने के लिए। तो ये बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट ये डाल के दे दे, तो एक तलावा, एक तो पोटेटो, फिर तलावा, फिर ये सॉल्ट, ये और इस तरह जो चिप्स होते हैं नॉर्मली, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो सेहत को जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं या ज्यादा फेट और वेट को जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनमें इन चीजों का भी अमल दखल बहुत ज्यादा होता है।
ये पोटेटो तो मोटेटो है, ये मोटा करता है बदन को, समझे, और इस शुगर के मरीज के लिए भी मुजिर, शुगर भी ये मतलब प्रोवाइड करता है, लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, और कोई घर इससे खाली नहीं, और खाना चाहिए, ये सबके लिए नुकसानदेह नहीं है। या शुगर भी है तो अगर थोड़ा बहुत पीस खा लिया किसी ने वो अलग चीज है, यानी ये जिस फूड का नाम लिया ना
फ्रेंच फ्राइज,
ये हर बर्गर के साथ आते हैं, वो क्या होता
है? जी जी जी,
वो ब्रोस्ट के साथ भी आते हैं, सबके साथ मिलता है,
बच्चे शौक
से सबका साथ, ये सबके साथ चलता है
फ्रेंच फ्राइज।
जी
तो ये तो तेल भी है, नमक भी है, खुद पोटेटो यानी आलू, मेमनी में हम बोलते हैं बटाटो, तो ये भी है, ये बटाटा अच्छी चीज है, देखो अल्लाह की नेमत, कोई भी खराब नहीं है, ओवर लिमिट जो भी करेंगे, पानी भी भरते चलेंगे पेट में, तो पेट क्या करेगा फटने के अलावा, तो इसलिए वो हर चीज जो हो उसकी लिमिट में हो, एतदाल के साथ आलू भी खाएं, बेशक मिठास भी खाएं, मगर मिठास में मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, ये व्हाइट शुगर जो है चीनी, इसकी मुखालफतें बहुत डॉक्टर्स ने की है, इसके आर्टिकल भी, ये मतलब एक स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, इसके बजाय चीनी के बजाय गुड़ खाया जाए, गुड़ वो जो देसी गुड़ कहते हैं जिसको, देसी गुड़ ये फायदे वाला है, लेकिन शुगर में ये भी पीछे नहीं है, शुगर है ये, लेकिन सेहतमंद अगर ये खाए, या जिसको शुगर कम कम है, थोड़ा थोड़ा है, तो वो खाए तो थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल करे, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये सारे काम जो हम बोलते हैं ना, ये एक जनरल बात होती है, करना वो होता है जो डॉक्टर बताए, डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए, तो ये गुड़ अच्छा होता है, शहद इससे अच्छा होता है, शहद का इस्तेमाल, लेकिन शुगर के मरीजों को शहद का इस्तेमाल मना करते हैं, डेयरी के शहद की बाज डॉक्टर या हकीम इजाजत देते हैं, इसमें शुगर की मिकदार कम होती है, क्वांटिटी शुगर की कम होती है, तो ये मगर ये मैं कर रहा कि आप जिससे इलाज कर रहे थे वो डॉक्टर जो मशवरा दे उसको फॉलो करना है, हम लोग जनरली ये नुस्खे या जो बताते हैं तो एक जनरल होता है, तो हर चीज किसी को मुआफिक आ जाए ये जरूरी नहीं होती, किसी को मुआफिक आएगी किसी को नहीं आएगी, अल्लाह पाक सब पर रहम करे, तो बच बच के चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा नजर आ जाएगा, पेट आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी मतलब यानी कि वजन कम होगा तो फुर्ती ज्यादा रहेगी, आप दुनिया का काम भी आसानी से कर पाएंगे और दीन का काम भी कर पाएंगे, वरना परेशान, अब बैठे बैठे थक जाएंगे, खड़े खड़े थक जाएंगे, चलते चलते थक जाएंगे, थकन लगेगी और मतलब शायद लाइफ भी जो है ना वो कम होती चली जाएगी, जल्दी जल्दी फिर ये शायद तैयारी शुरू हो जाए, ऐसे अमराज फिर लग जाते हैं, अल्लाह सेहत दे, मरना बहरहाल है सबको, मोटे को भी मरना है, पतले को भी मरना है, सबको मरना है, लेकिन पतला पतला होता है, वो की कहावत सुनी थी कि पतला देखकर लड़ना नहीं, मोटा देखकर डरना नहीं, ये अपना भाग सकेगा ना ये लड़ सकेगा, हाँ मगर बच के रहना, फुर्ती रखना, अगर ये तुम पर गिर गया ना घबराकर तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
हमारे यहाँ जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं तो फिर हम इसकी रिसर्च में भी जाते हैं और बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है, 3 दिन में यूं हो जाएगा, हफ्ते में यूं हो जाएगा, 15 दिन में यूं हो जाएगा, असल में जब ओवरनाइट वेट बढ़ता नहीं है तो ओवरनाइट वेट घटता भी नहीं है। जिसको बढ़ाने में 10 से 12 या 15 साल या 5-6 साल लग गए, उसको घटाने में भी चंद महीने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि इसको फौरन हम स्टार्ट लेंगे और हम कहेंगे यार फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ते पड़ते पड़ता है। और 50 साल के बाद मेरी जो मालूमात है, 50 साल के बाद सबसे आखिर में जो फैट कम होता है वो बेली फैट कम होता है, पेट का फैट जो है ना ये आखिर में कम होता है। और उसमें भी जो लोअर बेली फैट पहले कम होता है और अपर बेली फैट बाद में कम होता है। तो ये जब तक ये हमारी नॉलेज नहीं होगी ना, हम इसे इस्तेकामत के साथ कर नहीं सकेंगे। अब वो तो शुरू तो कर दिया हमने, और 15 दिन 20 दिन महीना दिन चलो रुके 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 रुके। एक इस्लाम में मेरे साथ सफर में थे, तो हम किसी मुल्क में थे, तो वहां तकरीबन समझे 3 हफ्ते हम रहे। तो 3 हफ्ते रहे तो वो इंग्लिश कंट्रीज के थे, तो 3 हफ्ते साथ रहे, तो 3 हफ्ते तक फास्ट फूड खाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं तो कभी रमजान में एक हफ्ता नहीं बचा, ये पहली दफा जिंदगी में हुआ कि 3 हफ्ते तक मैंने फास्ट फूड नहीं खाया। तो इनको सदमा हो गया था ना फास्ट फूड ना खाने का 3 हफ्ते का। और पता नहीं जाने के बाद उन्होंने जो अपनी अदाएं की होंगी वो अदाएं की होंगी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम महीना 15 दिन 20 दिन में फर्क ना पड़े, कांटा 15-20 दिन में बोले ही नहीं कि मैं हिलू ही नहीं, तो इस पर हमें इस्तेकामत कैसे नसीब हो कि हम इसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि यहां पर इस्तेकामत का बड़ा मसला आ जाता है।
लेकिन रिजा अगर पेश नजर हो ना तो वेट पेट सब सेट इंशाल्लाह। हम अल्लाह की रिजा के लिए करें और एहतियात करें खाने पीने में। हदीस पाक सुने, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में कम खाए कम पिए, अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने उस पर फख्र फरमाता है। अच्छा, एक हदीस कुदसी, वो हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि बात अल्लाह पाक की और अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम के, जो भी इरशाद है वो अल्लाह पाक का है, लेकिन जो अल्फाज हैं वर्डिंग ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये हदीस कुदसी कहलाती है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो बंदा मेरी खातिर एक लुकमा भी छोड़ देगा मैं उसके बदले उसे जन्नत के दर्जात अता फरमाऊंगा। मुझको भूखो प्यास सहने की खुदा तौफीक दे, तुम तेरी यादों में रहने की सदा तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये कि अपना जहन बनाए, इसके फजाइल पर गौर करें कि लज्जत जो टेस्ट ये यहां तक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे आजमाइश इम्तिहान मसाइल। तो अगर इस थोड़ी सी लज्जत पर हम अल्लाह करे काबू करने में कामयाब हो जाए ना, तो इंशाल्लाह इसके फवायद देख लेंगे, वरना ज्यादा खाएंगे तो हिसाब भी ज्यादा। और लज्जत के लिए खाना, हम लोग लज्जत के लिए खाते हैं। बाहर शिद में लिखा है कि तलज्जुज़ो तनअ्रुम, यानी लज्जत के लिए टेस्ट के लिए खाना, ये कुफार की सिफत है, गैर मुस्लिमों कि ये मतलब सिफत है। तो इसलिए मतलब खैर पेट भर के खाया या ज्यादा जो खा लेते गुना नहीं है, गुना नहीं है, अलबत्ता पेट भर गया, अब मजीद खाना जबकि जन्न गालिब बोलते हैं ना कि ख्याल जम जाए कि अब एक्स्ट्रा खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये इसका ख्याल जम जाए फिर भी खाए, अब ये जो खाया ये हराम है उसके लिए। अब यूं मतलब, वरना वैसे पेट भर के नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं पीते हैं तो ये यूं गुना नहीं है। कोई ये नहीं समझे कि हम नाजायज कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं तो अब ये चीज खा ली तो पराठा खा लिया तो गुनाहगार हो गए, तो पिज्जा खा लिया तो गुनाहगार हो गए। ये देखना है कि ये चीज आपकी सेहत को खराब तो नहीं कर रहा, यानी जन गालिब है कि ये चीज खाऊंगा तो सेहत को खराब करेगा, तो फिर इस पर हो सकता है कोई मसला कायम हो। दोबारा एहतियात करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
एक रिसर्च ऐसी भी, फेक हंगर एक टर्म है, बाज़ोकात हमें भूख का एहसास हो रहा होता है मगर वो बेसिकली वो भूख खाने की नहीं होती। अगर हम ऐसे मौके पर पानी पी लेते हैं ना तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो ये मैं इसकी स्टडी कर रहा था, तो ये वो भूख नहीं होती खाने की, हम ऐसे मौके पर खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मौके पर पानी पी लेंगे ना, तो पानी पीने से आपका वो खाने का जो दिल है या खाने का जो जहन है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि मतलब, क्योंकि मैदे को उस टाइम पर कुछ इसके अंदर डालना होता है, आप उसको पानी दे दे तो वो मैदा कहता है ठीक है मुझे मिल गया, तो उसकी डिमांड जो है ना वो वहां पर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे मौके पर खाना खाने के बजाय हम पानी पी लिया करें, और सोने से कितने घंटे पहले ना खाना चाहिए वो डॉक्टर से मशवरा करें, तो ये भी एक चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत को बेहतर करती हैं, हमारे वेट को नॉर्मल करती हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तूबु इलल्लाह सल्लु अलल हबीब मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी,
सबसे आखिरी नबी,
हर सहाबी ये नबी
जन्नती जन्नती,
सब सहाबियात भी
जन्नती जन्नती
जन्नती जन्नती जन्नती जन्नती। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर मैं ये अर्ज कर रहा था कि बसा औकात हमें कहीं हुजूर दावत होती है, तो अब वो दावत के साथ साथ कुछ ना कुछ दो चार छह इस्लामी भाई साथ चल पड़ते हैं, कुछ इस तरह के और जान पहचान वाले होते हैं साथ चल पड़ते हैं, तो दावतों के लिहाज से क्या होना चाहिए? बादों का हम दावत इस्लामी के दीगर सफर में होते हैं, तंजीमी सफर होता है या कहीं भी हम पहुंचे हुए होते हैं, तो किसी ने अपने घर पर कोई दावत रख ली, कहीं और रख ली, प्राइवेट तौर पर ऐसी चीजें होती हैं, तो अब वो इसमें कितने इस्लामी भाई साथ आ सकते हैं, कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इसमें मेजबान का क्या, मेहमान का क्या, इसमें सवाब गुनाह के ताल्लुक से हमारी क्या सोच होनी चाहिए, अगर इसमें कुछ रहनुमाई फरमा दें।
यह है बड़ा नाजुक मसला और यह भी वाकई इसी हद तक आम है। तो जो बगैर दावत के खाने में गया, किसी की दावत पे गया, यदि से पाक कल किसी के ने जो बगैर दावत के किसी के घर चला गया खाने के लिए, और तो वो चोर होकर घुसा दाखिल हुआ और गारत घर बनकर निकला, तो इस तरह मतलब किसी के घर पे यूं किसी की दावत में बगैर दावत के चला जाना ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है कि उसका आपने खाना खा लिया और फिर उसके घर जाना। अच्छा, घर पर भी किसी के जाने में मसले हैं कि जिससे के यानी मुझे इसका ज्यादा परेशानियां बाज़ूकात होती हैं कि मुझे मखसूस अफराद से मिलना है और मैंने भाई के तय हो गया कि भाई हम 12 आएंगे, अब 12 के अलावा 15 और आ गए उसके साथ, तो उसमें भी ये है कि 12 के बदले जितने भी आए बगैर मेरे कहे तो वो सबके सब गुनाहगार हैं, मेरे घर पे दाखिले की इजाजत जबकि मैंने नहीं दी है, तो मेरे से इजाजत क्यों नहीं दी? इसने बोला चला जाओ, उसने बोला चला जाओ कि भाई तो इसका घर है, तो हमारा उस्ताद है, तो हमारा पीर है, नहीं। हुकूक लिबाद का मामला जो है ना ये अपनी जगह पर है, तो किसी के घर बगैर इजाजत के दावत के अंदर चला जाना, दरवाजे पर दस्तक देना और है, तो इसके भी मसले हैं दस्तक देने के भी, नाराज हो जाते होंगे कि यार दरवाजा खोला ही नहीं, तो ये है कि भाई आप बाहर से सलाम करें, दस्तक दें, समझे? फिर ये कि अगर दरवाजा नहीं खुलता तो आप ये समझ लें कि या तो उनको पता नहीं है मेजबान को, या ये कि वो हमसे मिलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, तो बाहर शरीफ में साफ लिखा है खुशी खुशी लौट जाओ, ये नहीं कि उसको बुरा भला कहा कि बड़ा मगरूर हो गया बाबा, बड़ा बहुत बड़ा आदमी हो गया, हम दरवाजे पर गए दरवाजा बजाया इतना यार, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आई, इसने जवाब ही नहीं दिया, अब यार ऐन मुमकिन है जवाब न देने की वजह हो कि ये बेचारा वॉशरूम में हो और आप दरवाजे पीटे जा रहे हैं, या उसकी बेल पर आपने अंगूठा दबाकर गरीब का मतलब है कि वो दिमाग खुश कर दिया आपने टेंशन में, यही कहूंगा और क्या अल्फाज कहूं, तो इस तरह मतलब ये है कि बड़ी बदतेजी भी होती है इसमें, ये बेल पर बच्चा सोया है बेचारा बीवी वो हड़बड़ा के जाग जाएगा, औरतें परेशान घर की कि ये कौन आ गया है, और फिर पता चलेगा कि ये हजरत है कोई, तो फिर इंप्रेशन जो पड़ता होगा مذہبی لوگوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو تہذیب کے اندر ہی جو کچر وہ ہونا چاہیے. دروازے پر ایک بار دو بار تین بار نوک کیا, دستک دی, مگر آہستہ آہستہ یا بیل بجائی, تو اس کے بعد بس وہ کٹا چلے جائے. اب زیادہ ان کو پریشان نہیں کریں, دروازہ توڑ کر اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دروازہ زور سے بجانا ہلانا کیوں, مطلب چاہے آپ کے فری دوست ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. گھر کے دوسرے افراد تو آپ سے فری نہیں ہے نا دوست, ہوں تب بھی ایک بات ہے کہ یہ تہذیب اسلام کا ہر عمل جو ہے یہ مطلب بہترین ہے, بہتر ہی نہیں بہترین ہے. اس میں مطلب ہے کہ بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت مطلب بدتمیزیاں لوگ کرتے ہیں, پھر بدگمانیاں کریں گے, غیبتیں کریں گے. وہی یار جب یہ آیا تھا تو میں نے تو بالکل اس کا گلی میں جا کے استقبال کیا تھا, تو کھانا پی کر میں گیا تو یار ایسا مغرور ہو گیا دروازہ نہیں کھولا. یعنی اس طرح کی بدگمانیاں, غیبتیں, تہمتیں, تو تہمتیں بھی ہوتی ہیں نا یہ, کہ اس نے مغرور ہو گیا تو تہمت تو ہے آپ کے پاس, کیا ثبوت ہے کہ یہ مغرور ہو گیا. اس طرح فون کسی کو آپ نے کیا, بیل بجائی فون کی, اٹھائے اس نے مطلب اٹینڈ نہیں کیا یا وہ اٹینڈ نہیں ہوا, جملہ تو یہ بنے گا نا اٹینڈ نہیں ہوا, اٹینڈ نہیں کیا یا اس نے نہیں میرا مطلب اس کو اٹینڈ نہیں کیا اس نے, اور بس میرا نمبر دیکھ کر اس نے بند کر دیا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری بدگمانیاں. تو اس میں مطلب آدمی مجبور ہوتا ہے, بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے, کسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا یا مصروف ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم مطلب اس پہ کیوں تبصرے کریں, آخرت میں ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دیں گے ہم. تو اس لیے مطلب تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہم سب کچھ کریں گے, لوگ ہمارے قریب بھی آئیں گے, ہمارا عمل نامہ بھی بہترین بنے گا اور سمرے گا, لیکن یہ کہ اللہ توفیق دے. تو بہرحال کسی کے گھر کبھی بھی نہیں جانا ہے نہ ہم کو, مجھے اس کا بہت تجربہ ہے کہ ہم نے اتنے افراد کی دعوت دی پیر صاحب کا آستانہ ہے. چلو یہ کوئی تھوڑی بات ہے یار, کھانا کو برستا تھوڑی چھت سے پیر صاحب کی. تو بہرحال یہ کہ کسی کے بھی گھر, چاہے پیر ہو, استاد ہو, امام صاحب ہو, خطیب صاحب ہو, آپ کے خالو ہوں, چاچو ہوں, کوئی بھی ہو, بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے کسی کے گھر کھانے کے لیے. وہ تکلیف, اور بعض تو ایسے بھی کرتے ہوں گے کہ وہ جانا ہی کھانے کے ٹائم پر ہے, تاکہ وہ بیچارہ مروت میں بولے کہ آئیے آئیے کھا لیجئے. تو اگر وہ ناگواری کی کیفیت میں آپ کو کھلاتا ہے نا, بعض وہ اندازہ ہو جاتا ہے, اب دل میں ہوتا ہے یار یہ کہاں ٹپک پڑا, اور آپ کو وہ ناگواری کے انداز میں کھلاتا ہے, یہ بھی ناجائز ہے آپ کا کھانا. کھانا کھلانا پیسے لگتے ہیں یار, مفت آتا ہے, آپ سب سمجھتے ہیں پیسے لگتے ہیں, پیسے بھی جیسی جیسا کھانا ویسے پیسے. تو پیسے نہ بھی لگتے اس کو باہر سے آیا ہے کوئی بات نہیں, آپ نہیں کھا سکتے نہیں جا سکتے, تو کسی کے گھر پہ کھانے کے ٹائم پہ بھی نہیں جانا چاہیے, کسی دکان پر اس کی مصروفیت کے ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے, اب اس کے گاہک کے آنے کی ٹائم ہے, کسٹمر کے آنے کی ٹائم ہے, اور آپ جان پہ بیٹھ گئے اس سے باتیں کر رہے ہیں, اور اس کا خون جل رہا ہے بےچارے کا, اور آپ کا امپریشن کا کنڈا ہو رہا ہے. تو یعنی بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے. حسن معاشرت کس کو بولتے ہیں, حسن معاشرت یہ سب اس ماحول میں ہم سیکھیں گے نا, دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھیں گے. آپ انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے رہیں گے, اب تو ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھنا تو ساری دنیا میں اس کا تو حل ہے, یہ موبائل فون پر بھی آ جاتا ہے اپنے, پھر یوٹیوب پر بھی آ جاتا ہے, مدنی چینل جہاں ہے تو وہاں اور بھی آسانی ہے, تو وغیرہ. تو یہ ضرور مطلب ہے یہ سنا کریں, دینی کتابیں پڑھیں, اچھی صحبت اختیار کریں, علماء دین سے وابستہ رہیں, علماء باعمل پکے سنی, ٹھیک ہے نا, ان کی صحبت وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی ذرائع علم دین اور پرفیکٹ علم دین درست, اعلی حضرت مارکا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لگ کر جو عالم دین آپ کو نظر آتا ہے نا, اس کی صحبت انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گی. باقی تو حالات مت پوچھو کیا سے کیا ہو گئے, میں نے بہت کچھ آپ کو نسخے بتا دیے, 100 کتابوں کا مواد آپ کو 100 الفاظ میں سمجھا دیا ہے, اب آپ کی مرضی ہے.
یا سیدی,
ہم بس سمجھو اور غور کرو.
یا سیدی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ جو کسی کے گھر پہ بغیر دعوت کے آتے ہیں. اب جو خود شخصیات ہیں وہ کسی کی دعوت پہ جائیں تو وہ کتنے لوگوں کو لے کر جائیں؟
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت ہو تو سامنے آ جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی, ایک شخص پیچھے پیچھے چلنے لگا اور داخل ہو گیا گھر میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا کہ آپ اجازت دیتے ہیں, یہ میں اس کو لایا نہیں ہوں, اجازت دیتے ہیں, آپ اجازت دیں گے تو یہ کھائے گا, ورنہ. میزبان نے اجازت دی. سارے سرکار کے غلام, اور غلام کا مال آقا کا ہوتا ہے. ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے کہ جابر کے گھر جب دعوت ہوئی, غزوہ خندق کا موقع تھا, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واقعے کے سبب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس یعنی مبارک پیٹ پر بندھا پتھر دیکھ کر میرا دل بھر آیا, میں نے اجازت لی, گھر آیا اور بیوی سے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی, گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا ایک سا جو, ایک ناپ ہے, ایک سا جو کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے زوجہ کو جو کی روٹیاں تیار کرنے کا کہا, خود ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور زوجہ سے کہا جلدی سے گوشت روٹی تیار کرو. اس اہتمام کے بعد حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت تیار کرایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے خندق والو, جابر نے کھانے کی دعوت رکھی ہے, سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھانے. پھر مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. روٹی پکنی شروع ہوئی اور گوشت تقسیم ہونا شروع ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارا تھوڑا سا کھانا 1000 آدمیوں نے سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کے کھایا, مگر گندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا, کمی بھی نہیں آئی. اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی. حوالہ بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 108. تو یہاں معجزے کا ظہور ہونا تھا اور یہاں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ یہ آقا ہیں, یہ سارے غلام ہیں اور غلام کا مال آقا کا ہوتا ہے, اور وہاں امت کو سکھانا مقصود تھا کہ تم اگر کوئی بڑے آدمی بن بھی جاؤ, حضرت بن جاؤ, تو مریدوں کو اور شاگردوں کو لے کر دعویٰ مت بول دینا کسی کے گھر پہ. یوں بہت سنبھلنے کی بات ہے, کہیں بے تکلفی ہوتی ہے, کہیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آئے گا, جیسے کہ میں بھی جاتا ہوں کہیں کہیں, یہاں تو جانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کہیں تو پتا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پکاتے ہی اتنا ہے, تو انڈرسٹوڈ ہونا اور بات ہے, بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے تو کیا لگے بندے ہوتے ہیں, میں 2-3 جگہ جاتا ہوں موقع کی مناسبت سے, تو وہ لگے بندے ہیں میرے, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ایک بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے, تو یہ لوگ آتے ہیں اس طرح, تو یہ آئیں گے اور کھائیں گے. تو یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا, دلالتن اجازت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انڈونیشیا سے کچھ اسلام بھائی آئے ہیں اور وہ کچھ عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا مرشدی, نام سایا محمد ہیکل, برسال داری انڈونیشیا.
ویلکم.
Sekarang di provinsi saya di Aceh sedang mengalami banjir. Jadi kira-kira ada 8 kabupaten yang terdampak. Sehingga sudah 5 hari kami juga tidak dapatkan jaringan internet untuk menghabari ke kampung bagaimana info sekarang. Bahkan di rumah saya juga tergenang banjir. Kira-kira di daerah kami di Pidijaya khususnya sudah sampai air lebih daripada 2 meter. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara kami, mereka harus duduk di atas rumah untuk menunggu air selesai. Dan sebahagian juga di kabupaten yang lain, pesantren-pesantren sudah runtuh. Dan juga jembatan di dekat rumah saya, itu juga sudah runtuh juga. Sehingga di kampung saya, yakni di Pidijaya, Darussunnah, Akhwan maupun Ikhwan juga sudah terdampak banjir. Dan juga ada dua mubalighin mau pergi ke sini. Mereka sudah terganggu perjalanannya karena sebab jembatan runtuh di jalan tersebut karena banjir. Mohon doanya yang mursyidi, semoga banjir yang ada di kampung kami di Aceh cepat terselesaikan dan kami bisa mendapatkan info langsung bagaimana keadaan orang tua kami di sana.
Main arz karna chahunga ke 5 din se na rukne wali barish ne kafi tabahi machayi hai Aceh sube mein jo hamara suba hai aur iske jo takriban 8 shahar hain wo bahut zyada mutasir hue hain. اور اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو تقریباً 2 meter پانی چڑھ گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ کر پانی کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ بجلی وغیرہ وہ بھی منقطع ہو چکی ہے. ہم اپنے والدین سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ خیریت سے ہیں, بہن بھائی کیسے ہیں. دارالسنہ جو دو ہیں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات وغیرہ وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, یہاں تک کہ اس صوبے سے دوسرے صوبے اس کو ملانے والا پل جو ہے وہ بھی گر چکا ہے. عاشقان رسول کا ایک بہت بڑا دار العلوم وہ پورا جو ہے نا ڈھے گیا ہے, پانی میں بہہ گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم دعا فرما دیجئے کہ یہ پانی اتر جائے اور یہ مصیبت سے مسلمانوں کی جان بچے, ہم اپنے والدین سے رابطہ کر سکیں اور تمام مسلمانوں کی خیر ہو.
آمین. اللہ اکبر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ کرے کہ پانی اتر جائے اور یہ بیچارے جو عاشقان رسول پھنسے ہوئے پانی میں, اللہ کرے سب عافیت کا معاملہ ہو جائے. اور یہاں بیچارے آئے, ظاہر ان کے خاندان وہاں ہیں تو ان کو بے چینی ہو رہی ہوگی کہ کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا. اللہ کرم فرما دے. آپ ہمت رکھیں, میں آپ کے لیے مطلب ہے کہ دعا ہی کر سکتا ہوں. اللہ پاک اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے آپ کی یہ مشکل آسان فرما دے اور سب کی مشکل آسان کرے اور سارے وہاں بارش کا پانی اترنے کے بعد اپنے اپنے نارمل لائف میں آ جائیں اور رحمت کے سائے میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی کے مزید اعمال بجا لائیں. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ویسے یا سلاموں پڑھتے رہے نا آپ لوگ جو آئے میں, وہاں تو پیغام پہنچ نہیں رہا, تو اللہ کرے گا تو وہاں بھی سلامتی کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سلامو یا سلامو یا سلامو. اور اگر گھر سے نکلنے سے پہلے اور گاڑی میں جیسے سوار ہو رہے ہیں, ہوائی جہاز میں سوار ہو رہے ہیں, ٹرین میں, بس میں, اسکوٹر پہ, تو یا حفیظو یا سلامو, یا حفیظو یا سلامو, یہ 11 بار اونلی 11 ٹائم یہ اگر پڑھ لیں 11 ٹائمز تو انشاءاللہ گاڑی کی حادثے سے حفاظت ہوگی, ایکسیڈنٹ سے, اور گھر سے نکلیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کی بھی حفاظت ہوگی, کوئی آپ کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا, یا کوئی نقصان ہونا ہوگا تو انشاءاللہ وہ رک جائے گا, یا بڑا نقصان ہونا تھا تو وہ چھوٹے میں تبدیل ہو جائے گا. یا حفیظو یا سلامو 11 بار 11 ٹائمز. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.